نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حول الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما دون جود وكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه आजकल तरक्की का दौर है और इस तरक्की के दौर में जो चीज खास नुमाया है नजर आती है वो कंस्ट्रक्शन वर्क है। यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के हर शोबे के अंदर इंसान तरक्की कर रहा है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का मामला है इसमें ख़ास तौर पर नज़र आता है कि भाई नई नई चीज़ें जो हैं और नए नए तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती हैं, और ये समझें कि ख़ास मेयार जो आज का है बिल्डिंग्स का ऊंचाई का है। एक हद तक जो है बिल्डिंग ऊंची होती जा रही हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पता नहीं अब तो 100 भी हो गए, शायद 120 फ्लोर भी हो गए। ताज्जुब की बात है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग है और खड़ी हैं। तो ये एक दौर है तरक्की का जिसमें हो रहा है, आंदा दौर में पता नहीं क्या होगा। तो जो जो बिल्डिंगें खड़ी हैं सारी, इनका असल कमाल क्या है बिल्डिंगों का कायम हो जाने का या खड़ा होने का? फ्लोर नहीं है एक्चुअल, जो है जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी है वो बुनियाद है इसकी, फाउंडेशन। कमाल फाउंडेशन का है कि जिस पर इतनी लंबी चौड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, वरना तो ये हम अमून ऐसा है कि देखें आप फर्स्ट फ्लोर मकान बनाए तो और उसके बाद आप कोशिश करें कि इस पर एक और मंजिल बना लें, तो जो आर्किटेक्चर होंगे या इंजीनियर्स होंगे सबसे पहले आके आपके एक्सटेंशन भी करें तब भी आके आपकी बुनियादों को देखते हैं कि इस पर कुव्वत है ठहराने की या नहीं कुव्वत। फिर उसकी साख्त है तो फिर उसको कहते हैं एक और बिल्डिंग बना लें, और मजबूत है बुनियाद तो कहते हैं एक और मंजिल बना लें। जैसे जैसे बुनियाद मजबूत होती जाती है बिल्डिंग बुलंद होती चली जाती है, ऊंची दर ऊंची, ऊंची दर ऊंची। तो 100-150-200 आप जितनी आप बिल्डिंग बना रहे हैं या बन रहे हैं तो इनकी बुनियाद का कमाल देखें आप कितना ज़बरदस्त हो और किस दर्जे की उस बुनियाद होगी जिसने उसको कुव्वत दी हुई। अगर बुनियाद कमज़ोर हो बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन आपने देखें बड़े हादसा होते हैं उसमें, ज़रा सी हवा तेज़ हो हजुकान आए या कोई चीज़ है। तभी एक साहब पत्नी क्लिप्स दिखा रहे थे मुझे दुबई का कि कोई हजुकान आया बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा ताजु हो दे इतनी ऊँची बिल्डिंग ऐसे जैसे बच्चों का खिलौना नहीं होता इस तरीके से वो ज़मीन पर आ रही थी सारी हवा के साथ, बड़ी ऊँची बिल्डिंग थी। तो क्या वजह पता चला कि भाई बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत थी, देखने में बड़ी लाजवाब लगती थी, लेकिन क्या था उस बिल्डिंग के अंदर बुनियाद नहीं थी उसकी, बुनियाद कमजोर थी तो बिल्डिंग जमीन पर आ गई, गिर गई। मिसाल देने का मतलब यह है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने जो हमें दीन अपने फ़ज़्ल व करम से इनायत फरमाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी मानिंदे एक बिल्डिंग के, दीन जो है एक बिल्डिंग है और इस पे चाहे आप कितनी मंजिलें बनाते चले जाएं, अरूज दर अरूज, या तो 100 पे ख़त्म हो जाएंगी लेकिन इसकी हद कोई नहीं बुलंदी की। ये ऐसी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन वजह वही है कि बिल्डिंग ऊंची वही होती है जिसकी बुनियाद सही हो। अगर बुनियाद इसकी सही नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे ऊंची कर लें आप, लेकिन जरा भी कोई झोंका आया तो बिल्डिंग पे धड़ाम से नीचे गिर जाए। बड़ी मशहूर हदीस है जिसे जुलैल भी कहते हैं, जिसे एहसान भी कहते हैं, इसको बुखारी है। में ये हदीस आई है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं इस हदीस को कि एक दफ़ा हम सब सहाबा बैठे थे तो एक शख्स अजनबी था आया और बहुत ही करीब होता चला गया नबी वसल्लम के, हत्ता के दो जानू बैठा और बाज़ बैत में के अपने हाथ भी नबी एक जानू मुबारक पर रखे, बाद अब तरीके से बैठ गया। हम गौर से उस आदमी को देख रहे हैं कि आदमी पहले नज़र तो नहीं आया और मुसाफिर भी नहीं लगता था, कोई ना उस पर थकान थी, ना कोई गद का निशान था, ना कोई ऐसी चीज़ थी। तो हम ताज्जुब से देख रहे हैं, उसने सवाल किया आप सब से ईमान क्या है, ईमान के बारे में, आपने भी खुद ईमान का जवाब दिया। अकायद निभाने हैं, अल्लाह पे ईमान रखना, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान रखना, अल्लाह के पैगंबरों पे ईमान रखना, उन किताबों पे ईमान रखना, क़यामत पे ईमान रखना। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा, खुद ही सवाल कर रहे और खुद ही तायद भी कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा इस्लाम क्या है, अल्लाह के नबी ने शायद फरमाया इस्लाम क्या है, नमाज रोज़ा हज ज़कात तमाम अमल जो है ये इस्लाम है। तो फिर उन्होंने पूछा ज़्यादा ठीक कहा, तीसरा सवाल पूछा कि भाई एहसान क्या है, आप सुन एहसान की तारीफ में कि बंदा ऐसी इबादत करे कि जैसे अल्लाह को देख रहा है, अगर ये नहीं तो दूसरी पोजिशन हो कि अल्लाह उसको देख रहा है। उसके बाद चले गए तल नबी सल शाद फरमाया कि भाई जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तुम्हें दीन सिखाने आए थे, सारा दीन जो इसमें बंद कर दिया। पहले क्या दो चीजें थी जो अकायद और दूसरी हमारा, ये पूरा बिल्डिंग का ढांचा है हमारे दीन का, इसी पे जितनी चाहे आप स्टोरी बना लें, अकायद को जितना चाहे बुलंद करें आप, ईमान जितना चाहे बुलंद कर, जाती है हदीस में साबित है, कुरान में साबित है, बढ़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये हदीस सुनी है कि किसी के ईमान में इस हदीस से 75 तरक्की हो जाएगी, किसी को असर भी नहीं होगा, किसी को डाउन भी नहीं होगा, ये मुख्तलिफ कैफियात होंगी। इसी तरह कुरान ने कहा जब मेरी आयत पढ़ी जाती है तो मेरी आयत से लोगों के ईमान बुलंद हो जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, और किसी को असर नहीं होता है। ये मुख्तलिफ कैफियत है, जैसे मुख्तलिफ बिल्डिंग होती हैं ना, कितनी ऊँची आप बिल्डिंग ले जाए। तो ये क्या चीज़ें दो, ये बिल्डिंग की मानंद है इस्लाम की, अकायद और हमारे बुनियाद, समझा रही बात। बुनियाद क्या है इसकी, फिर किस बुनियाद पे ठहरी है, हमने तो बुनियाद को देखना है ना, फाउंडेशंस की क्या है। तीसरी चीज जो बताई थी इसे मरतबा एहसान कहा जाता है कि जब बंदा इबादत करे तो ऐसे हो कि जैसे अल्लाह को देख रहा है, वरना अल्लाह उसको देख रहा है। علماء فرماتے ہیں کہ یہی وہ بنیاد ہے حقیقت میں. اس کا تعلق نہ کسی عقیدے سے ہے نہ کسی عمل سے ہے. عمل کس سے ہوتے ہیں؟ انسان کے اجزاء سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے، نماز، روزہ، حج، سفر. اس کا تعلق کس سے ہے انسان کا؟ دل سے ہے بنیاد کا. تو پتہ ہی چلا کہ اس پوری بلڈنگ جو ہے اسلام کی، جو ہمارے دین کی بلڈنگ ہے اسلام و عقیدہ، اونچی بلڈنگ، ابھی تو فرسٹ فلور ہے نا، اس پہ جتنے چاہے فلور بنائیں، لیکن فلور بنیں گے کب؟ جب بنیاد ہماری مضبوط ہوگی. بنیاد کس پر ہے؟ دل پر ہے. جب یہ بنیاد مضبوط ہوتی چلی جائے گی الحمدللہ اس پہ بلڈنگ ہماری بلند ہوتی چلی جائے گی، اونچی ہوتی چلی جائے گی. مضبوط، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، جتنی مضبوط ہمارے دل کی حالت ہوگی، اتنی ہی مضبوط ہماری بلڈنگ ہو جائے گی. مثال جیسے کہ ایک بلڈنگ ہے، آپ اس میں اونچی ہے، خوبصورت بھی ہے، پینٹنگ بھی ہے، پیپرز بھی ہیں، کارپیٹس بھی ہیں، الیکٹرک کی خوب چیزیں ہیں، سب کچھ. لوگ واہ بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ بڑی پیاری بلڈنگ بنی ہے، کیا چمک رہی ہے، دمک رہی ہے. ذرا ہوا آئی، ہریکن آیا، طوفان آیا، دھرم سے بلڈنگ پہ نیچے، خوبصورتی ختم اس کی، بڑا فاؤنڈیشن اس کی صحیح نہیں تھی. بعین اسی طرح انسان کے اعمال بہت نظر آتے ہیں. بلڈنگ ہے نا، خوبصورت اعمال بھی ہوں گے، بڑی بڑی اعمال ہمارے کیفیتیں ہوں گی، رمضان بھی آئیں گے، حج بھی آئیں گے، عمرے بھی آئیں گے، تحجد بھی ہوں گی، نوافل بھی ہوں گے، فرائض بھی ہوں گے، تو ہم سمجھتے ہیں بہت ماشاء اللہ اونچا کام ہو گیا، بڑی سننے والی بات ہے. دیکھیں یہی ہے نا ہمارا معیار، جیسے میں نے بلڈنگ کا معیار بتایا. ہوگا کیا؟ بنیاد اس کی مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ اصل چیز تو بنیاد کی ہے. اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہوئی تو جس طرح حوادث آتے ہیں، ہریکن آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بلڈنگ گر جاتی ہیں، اسی طرح یہاں بھی ایسے طوفان آتے ہیں، حادثات آتے ہیں. تو ان حادثات کے اندر ایمان جب انسان کا ڈام ڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعمال ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض کو دھڑام سے بلڈنگ کی طرح بعض اوقات وہ ایمان گر جاتا ہے. سارے جس طرح بلڈنگ ٹوٹی، کارپیٹ بھی گیا، وہ پیپر بھی گیا، الیکٹرک سب کچھ چلا گیا، اور جب اس طرح اس دین کی بلڈنگ گرتی ہے کسی حوادث سے ذریعے، حادثات ہر وقت جنم لیتے ہیں، ایسے موسم ہے نا، اس کا موسم ہر وقت جنم لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایمان کا ہر وقت، اعمال کا ہر وقت ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور لوگ بک جاتے ہیں ایک دم. کیسے پتہ چلتا ہے کہ بنیاد پکی ہے، صحیح ہے ہمارے دین کی؟ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جس وقت حرام، حلال، اللہ کے دیے احکامات، اعمال، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس درجے پر اس پر قائم ہے، کتنی جلدی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کو اللہ نے حلال کہا ہے، جس کو حرام کہا ہے اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے حلال کو، یعنی اس کے اندر کتنی طاقت موجود ہے. اچھے وقت پہ تو خوب نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن ذرا ٹیسٹ وغیرہ آیا تو فوراً اس کو چھوڑ دیا. حرام کی طرف فوراً ہاتھ بڑھ گیا انسان کا، وہ بھول گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، ہماری شریعت اجازت ہے دیتی، اجازت اس کی نہیں دیتی. تو یہ ساری پوزیشن بتاتی ہیں کہ تمہاری دین کی بلڈنگ کیا ہے، اس پہ اعتبار مت کر. کیونکہ بڑے بڑے ابھی تو واقعہ موقع آنے والے ہیں، موت کے وقت کیا یہ قائم کر سکیں گے ہم اس کو؟ جب ایک جھٹکا پڑے گا تو کہاں ایمان رہ سکے گا ہمارا؟ اعتبار تو اس وقت ہوگا، مضبوط بلڈنگ ہونے کا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ الحمدللہ کلمہ کہتے ہیں انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے انسان کو. لیکن یوں کھیل تو نہیں، ایک بلڈنگ آپ دنیا کی بناتے ہیں، اس کی بنیاد پر کتنی محنت کرتے ہیں آدمی بنانے کے لیے؟ پتہ چلے کہ یہاں پہ 60 فلور بنانا ہے، آپ جا کے دیکھیں کسی کنسٹرکشن کمپنی سے پوچھیں، کسی سے آرکیٹیکچر سے، کہ اس بنیاد کو ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس پر فلور نکالنا ہے. तो मेरे भाई ये जो दीन की बिल्डिंग है इसने तो हमें ही पहचाना, ये तो हमारा है ही बिल्डिंग, तो इसकी बुनियाद की तरफ कभी ख्याल किया हमने कि बुनियाद हमारी कितनी मजबूत है इसकी। बिल्डिंग तो खड़ी कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अमल हमारा चल रहा है सुबह से शाम तक, अल्लाह का फजल है। लेकिन जिस पे इमारत बन रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, उस कल्ब की पोजीशन क्या है, उस जमीन की पोजीशन क्या है, क्या हमने बिल्डिंग की तरफ बनाते हुए तवज्जो की, नमाज पढ़ते हुए तवज्जो की, ये सहार सकेगी ये बिल्डिंग या किसी वक्त फिर उड़ जाएगी मौके पर ही। दिन रात अपने अमालों को हम जाया करते हैं, दिन रात अपनी मेहनतों को हम जाया करते हैं, क्योंकि बुनियाद कमजोर है, किसी अमल का हम एतबार नहीं कर सकते। किस वक्त हम झूठ बोल पड़े, किस वक्त हम फिसल जाएं, किस वक्त हम हराम खा लें, किस वक्त हमसे कोई बुरा काम हो जाए, हमें बिल्कुल एतबार नहीं सकते। ये जिंदगी मोमिन की जिंदगी तो नहीं है दोस्तों, हकीकत जिंदगी गुजारने का तरीका तो और है, और है। वाकई अगर हम समझते हैं कि भाई बहुत ही बड़ी एक अल्लाह पाक ने हमें जिम्मेदारी दी है, और उस जिम्मेदारी को हम किस तरह पूरा करें कि हम फलाह तक पहुंच जाएं, दुनिया और आखिरत में फलाह हासिल कर लें, तो उसको उसी तरतीब से करना चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले हर मुसलमान का काम यह है, हर मोमिन मर्द और औरत का काम यह है कि अपनी बुनियादों को मजबूत करें, है या नहीं? बिल्डिंग खड़ी करने से पहले अपनी बुनियादियों को मजबूत करें। बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी हमारे अमाल मजबूत नहीं हो सकते। जब तक दिल इंसान का सही मजबूत नहीं हो, बुनियाद वहीं बनेगी ना दिल पर, तीसरा दर्जा जो बताया और तब एहसान। अल्लाह सुभान व तआला ने इसका मटेरियल दिया हमें मजबूत करने का, और जिक्र अल्लाह है, जिक्र अल्लाह जो दिया अल्लाह ने इसलिए दिया। किसी चीज से भी जो है इसकी बुनियाद मजबूत, इसका मटेरियल जो है वो क्या है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के नाम से। कितने मशहूर हदीस है, जब अगर ये दिल सही है जिस्म के अंदर तुम्हारा, तो पूरा जिस्म सही काम करेगा, बेहतरीन बिल्डिंग बनेगी, बेहतरीन अमल निकलेंगे उसमें। अगर तुम्हारा दिल खराब है तो पूरा जिस्म खराब है, यह हदीस है। कितना वाजा पैगाम देख, अगर बुनियाद पक्की है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर फिक्र ना करें, ये अमाल आपको बहुत बुलंद ले जाएंगे। और कितनी बड़े हादसात आए, कितनी बड़ी तूफान आए, कितने बड़े जलजले आए, कितनी बड़ी बड़ी हादसात आते हैं, मजाल है बुनियाद आप कितनी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, उठती चली जाएगी, हवा से हिलेगी आपकी बिल्डिंग का, सवाल ही पैदा नहीं। सूफिया कलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र को पकड़ा, इसी वजह से अल्लाह वालों ने जिक्र की वजह यह है करने की, मेन वजह जो है अल्लाह के जिक्र की यही है। ये कहते हैं फलाह पाना, जिक्र करो कसर से अल्लाह ताला कहते हैं फलाह पा जाओगे। थारे अमाल जो हम करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्डिंग बनेंगी चीज़ें हमारी, वो सब के सब महफूज होंगे अल्लाह के पास, अगर दिल को मजबूत कर लिया, बुनियाद को मजबूत किया, और उसका तरीका अल्लाह ने बताया। वस्कुल्लाह कसीरन, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र। अब एक जिक्र करने वाले मर्द औरतें और एक जिक्र ना करने वाले मर्द औरतें, जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। ये फर्क कम नजर आएगा, फर्क कम नजर आता है, जैसे एक बिल्डिंग है जिसकी बुनियाद बहुत ऊंची है, बेहतरीन बुनियाद पर खड़ी है ऊंची, उसी के साथ एक दूसरी बिल्डिंग खड़ी है बहुत ही खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, उससे भी ऊंची है, लेकिन बुनियाद ढीली है। आया तूफान, कोई चली हवा, आया जलजला, जिसकी बुनियाद कमजोर होगी पता लगेगा दोनों का कि किसकी बुनियाद कमजोर थी, वो धड़ाम से गिरेगी, कुछ दूसरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी रह जाएगी उसकी बुनियाद से। तो जब ऐसे मौके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला आजमाते हैं इंसान के दीन को, बिल्डिंग को आजमाते रहते हैं, जब ऐसे मौके आते हैं, रोज आते हैं हमारे सामने, तो आंख बंद कर लेते हैं, नहीं जी दुनिया के लिए ऐसी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, समझ जाओ कि इसकी बुनियाद बहुत कमजोर है, इसकी बिल्डिंग नहीं ठहर सकेगी। एक झटका जो मौत का पड़ेगा तो जरा जेरा हो जाएगी बिल्डिंग, पता भी चलेगा इसका, सब अमाल खाक हो जाते हैं उसके साथ इंसान, दुनिया में पता चल जाता है उसको, एक हादसे से पता चल जाएगा, एक हल्के से जलजले से पता लग जाएगा ये हमारी कितनी वो है, बुनियाद कितनी मजबूत है हमारी। दिन की बुनियादें मजबूत होती हैं, ईमान की सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके कदम में लरस जाए किसी चीज से, हराम की तरफ निगाह भी उड़ जाए, उनके हाथ भी उड़ जाए, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये क्यों होता है वहां से? अल्लाह का हुक्म जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म है ऐसे करो या ऐसा ना करो, क्यों होता है हमारे से हम कर जाते हैं? वजह यह कि बुनियाद कमजोर है ना, हिल जाती बिल्डिंग, बुनियाद कमजोर है, इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। ये क्यों हो गया हमारे से गुनाह? कभी इंसान सोचो सही है, मुझसे गुनाह क्यों हो गया? मेरा दिल क्यों कर रहा है कि मैं ऐसे करूं? मुझे क्यों लालच दुनिया है? मुझे क्यों हविस है इस चीज की कि हराम की तरफ जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, शर्म भी नहीं है, परवाह भी नहीं है? जो कुछ जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी गुजर रही है हमारे घरों में बाहर अंदर, माइनस माइनस परसेंट जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी, उसके मुताबिक जिंदगी है ही नहीं हमारी, क्योंकि बहुत जोर लगा तो 50% 70% आ जाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तकाजा है शरीयत जो अल्लाह पाक ने दी है हमें कुरान हदीस, उसके मुताबिक आयन मोमिन की जिंदगी जहां भी हो जिधर भी हो कामयाब इंसान वो है, नमाज भी उसकी कामयाब है, हज भी उसका कामयाब है, सब कुछ उसका कामयाब है। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब आदमी असल जगह पे जाएगा, जहां इंसान को मैंने बताया कि जो असल आएगा तो पता लगेगा कि बिल्डिंग सही किसकी थी और कमजोर किसकी बिल्डिंग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज याद रखें, एक चीज पक्की कि जो बिल्डिंग की बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश करता है दुनिया के अंदर, उसकी बिल्डिंग कभी खराब नहीं होगी, हमेशा मजबूती होगी, उसने कोशिश की है। आपने कभी देखा तो कोई भैया बिल्डिंग बनाने वाला है, उसने 6-7 महीने जो है उसे बुनियाद पे लगा दिए, उसने हजारों करोड़ों रुपए से बुनियाद पे लगाया, उसने कहा मुझे सबसे पहले बुनियाद चाहिए, ना जाने मैं मकान बना रहा है कोई, मैं यहां भी ऐसा होता है कि नहीं यार ऐसा मकान बुनियाद डालो कल हो सकता है मैं इस पर दूसरी बिल्डिंग खड़ी करूं या तीसरी बिल्डिंग खड़ी करूं। कहते ना इंजीनियर को तो किस पे तवज्जा देता है, किस जगह देगा नक्शे के, बुनियाद पे तवज्जा देगा कि कितनी बिल्डिंग आप यार ऐसे बनाना मजबूत करना, एक्सटेंशन भी आप कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे यार इस तरह बनाना, हो सकता है मुझे डबल करने की जरूरत पड़े तो मैं आसानी से कर लूं, मुझे इजाजत मिल जाए। इजाजत भी नहीं देते, जब आप किसी एक्सटेंशन की इजाजत मांगे तो क्या 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 टेस्ट करते हैं वहां के कि इसकी बुनियाद में ताकत है, वो कहेंगे बना लो, हम फर्क बना लेते हैं, लोग बना लेते हैं, परवाह नहीं करते, जैसे झूठे अमाल खड़े कर लेते हैं हम, लेकिन जो तो माहिर है वो जानते हैं जी कि ये गिर जाएगी और नुकसान देगी, आज नहीं गिरेगी 10 साल के बाद गिरेगी, इसमें जान नहीं है, उस इस्लाम में उस ईमान में उस अकायद में बिल्कुल जान नहीं होगी जिसकी बुनियाद कमजोर होगी। मना लें आप खड़े करें अमाल जितने कर सकते हैं, लेकिन अगर हराम चल रहा है और हमारे बिल्कुल शरीयत के खिलाफ जिंदगी की सारी चीजें नजर आती हैं, चाहे कितने अमाल खड़े कर लें आप हज ज़कात नमाज से, लेकिन वो इस दिन क्या होगा, वो गिर जाएगी। क्या बेहतरीन तरीका है कि जिस बिल्डिंग बनाते हैं ना अपनी, ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो उस लाइफ के लिए केयरफुल है और खौफ रखते हैं और जिनको जिंदगी का ख्याल है कि हमने मरना है, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं। आज की दुनियादार के आदमी की बात कौन कौन समझेगा जी मैं बात कर रहा हूं, उसके पल्ले नहीं पड़नी बात, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हुआ इस बात से, ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो खाइफ हैं कि हमारे पे जब पूछा जाएगा सवाल, फरिश्ते जब आएंगे, मौत जब आएगी, जब मुनकता हो जाएगी हमारे से सब कुछ ये दुनिया, उस वक्त मैं खड़ा होऊंगा, मैं अपने अमालों को तलाश कर रहा हूँ, वो बिल्डिंग गिर रही होगी क्योंकि उसमें बुनियाद नहीं थी, और वो बुनियाद दुनिया में पता लग रहा था। जिस वक्त कोई आदमी गलत काम कर रहा होता है, गैर शरी काम कर रहा होता है, तो खुद ही पता चल रहा है उसको कि मेरी बुनियाद कमजोर है, ये तो गिर रही है मेरी बिल्डिंग, इस वक्त मुझसे खुद पता चल रहा है मैं खिलाफ इशरा काम कर रहा हूँ, सुन्नत पे चलने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। जो रूह की दो जान है सबसे बड़ी नबी सुन्नत शरीफा, उसमें हिम्मत ही नहीं कि मैं किसी माहौल को लेके आ जाएंगे, दुनिया को लेके आ जाएंगे, इस क्या चीज़ बता रही है, बता रही है बुनियाद ही नहीं है इसकी, مطلب ایک مومن کی جو بنیاد کا تعلق تو یہ ہے, جیسے نبی نے اشارہ فرمایا کہ میرے صحابیوں کو دیکھو, تم احد کے برابر خرچ کرو گے ان کا آدھا سیر جو ہے وہ ان کے برابر ہو جائے گا, اس کے برابر بھی نہیں ہوگا. کیا چیز تھی؟ مضبوط بلڈنگ بتائیے, اتنا سخت بلڈنگ کے مضبوط ہے کہ کوئی حوادث سے دنیا اس کو ختم نہیں کر سکتا, ہلا نہیں سکتا, نہ ان کو بھوک ڈرائے گی, نہ ان کو نہیں کوئی اور کیفیت ڈرائیں گی, نہ کوئی دکھ کو ختم نہیں ہوگا. وہ بات وہ ہی کریں گے جس کی بنیاد, وہ بات وہ ہی کرے گا کہ جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہے, شریف صفات. یہ کیفیت ایک مومن کی, جو اس کی یہ کیفیت نہیں ہے میرے بھائیو, قرآن حدیث بتاتے اس بات کو, دھوکہ ہے, ہمارا بلڈنگ بہت کمزور ہے اور ایک جھٹکے میں گر جائے گا, پتہ ہی چلے گا گئے کدھر سب کچھ. جیسے بلڈنگ گرتی ہے نا, مسمار ہوتی, پتہ ہی چلتا. میں قرآن حدیث سے باتیں کر رہا ہوں. ہاں, جنہوں نے محنت کی بنیاد, وہ کیا محنت ہے؟ دن رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ذکر کیا کر رہے ہیں وہ, جس طرح وہ جس وقت بنیاد ڈالتے ہیں نا مکان کی, تو کھود رہے ہیں چیزیں ڈال رہے ہیں. جب آخرت کی اور اس اپنی بلڈنگ کی جو بنیاد ڈالنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بتائے ہوئے میٹیریل کو ڈال لیں. اللہ نے کہا اس کا میٹیریل کیا ہے, بنیاد کو مضبوط کس چیز سے کرو گے؟ اللہ 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 ذکر اللہ, با مقصد چیز ہے اللہ کا ذکر. سننا, کسی مقصد کے تحت اللہ پاک نے اپنی یاد کو ہم پر کہا ہے کہ ذکر کرو, سراسر ہمارا فائدہ ہے. جس نے اللہ کا ذکر کیا, جیسے اس نے محنت کی, 6-7 مہینے بلڈنگ کھودا, مضبوط کی بنیاد, یہ بھی یاد رکھے. جو حضرات اللہ کا ذکر کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ کے ذکر پہ محنت کرتے ہیں, الحمدللہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں, انشاءاللہ ان کی بلڈنگ نہیں گرے گی. اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے, لیکن دیکھتے رہیں جب تک بنیاد چھانتے رہیں گے, مضبوط ہوئی ہی نہیں, جب تک ہمیں اس دیکھنے میں آ جائے ہمارے کہ ہمارا ہاتھ حرام کی طرف نہیں اٹھ رہا, غیر شریک کو کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا, جب اس پوزیشن پہ وہ پہنچ جائے اللہ کا ذکر کرتے کرتے, جیسے بنیاد کو پکا کرتے 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 ایک انجینئر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ بس اب ٹھیک ہے, اب اس کو پاس بلڈنگ بنائے, تو ہمارے لیے کیا نشانی بتائیے کہ جس وقت بالکل تمہارا وجود ایکسیپٹ کر لے قرآن و حدیث پہ چلنا مکمل طور پہ, تو سمجھ جاؤ الحمد للہ تمہارے ذکر نے تمہاری بنیاد کو مضبوط کر دیا. اور یہ اسٹیج آ جاتی ہے, آپ کر کے دیکھیں, ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ الحمدللہ اپنی بنیادوں کو اسے صحیح کر کے چلے گئے. کتنا بامقصد عبادت ہے اللہ پاک کے, اللہ کے ذکر کی. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ذکر کو مت چھوڑو, نہ ذکر میں لذت دیکھو, نہ کشف دیکھو, نہ کرامات دیکھو, نہ بزرگی دیکھو, نہ اونچائی دیکھو, نہ نیچائی دیکھو, کچھ نہیں دیکھنا. مقصد ذکر کا جو ہے, ذکر کرنے کے بعد چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے, کس چیز پہ توجہ دینی ہے؟ کہ ہم سے کوئی غیر شریک کام نہ ہو رہا ہو, اس کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم سے کوئی غیر شریک کام نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو ہم کسی جگہ بھی نہیں توڑ رہے ہیں مکمل طور پر, اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. جب یہ ہم دیکھتے رہیں گے اپنی بنیاد کو ذکر سے پکا کرتے رہیں گے, کھودتے رہیں گے روزانہ صبح اور شام, اور دیکھتے رہیں گے اب ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, مقام بڑھتے ہیں, پہلے تو بالکل سپاٹ تھا آدمی, پھر اس میں کچھ خوف آنا شروع ہوتا ہے, پھر اس سے محنت کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں یار یہ تو آرام کام ہے, پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, ایک سٹیج آتی ہے انسان کی نا, اور آخر اس مقام پہ ذکر کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کہتا کچھ بھی ہو جائے میں یہ نہیں کر سکتا. جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر خوشخبری آ جاتی ہے, وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا تُفْلِحُونَ, پاک ہو گیا تو صاف ہے, تو کامیاب ہو گیا انسان. دیکھا کتنا بامقصد ہے یہ ذکر, دونوں پیمانے سامنے سامنے رکھنے. اب یہی نہیں کہ بس ذکر کرے جا رہے ہیں ذکر کرے جا رہے ہیں, نہیں, بنیاد ڈال رہے ہیں یا بلڈنگ کو دیکھتے رہے, کہ یہ نہ ہو میرا مال جس پہ میں محنت کر رہا ہوں, یہ نمازیں, یہ حج, یہ زکاتیں, یہ سب کچھ جو ہے دھرام سے بلڈنگ کی طرح سے, یہ خوبصورت بلڈنگ کیا کچھ لگاتا ہے, ایک ہوا کے ساتھ تباہ ہو جاتی ہے, ایک جھونکا آئے گا اللہ کے ہاتھ صاحب کا زمین میں بیٹھ جائے گی. تو اللہ کا ذکر کس نیت سے کرنا, سمجھ آ گئی بات؟ یہ بہت ضروری چیز ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کمپیئر کرتے رہنا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ کہ میں کس پوزیشن میں جا رہا ہوں ذکر کے ساتھ, کہ میں نے کام شروع کر دیا ہے اپنی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں, اور الحمدللہ जैसे जैसे दुनिया का सूर है, जैसे जैसे आपकी बुनियाद मजबूत होती चली जाएगी, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करता चला जाएगा। और सखी अब एक नुक्ता सुनने बड़ा खूबसूरत ध्यान में, अल्लाह ने फरमाया जिक्र कसीर, फरमाया ना कसीर को मुझे हद दे दो, आज तक मैंने डेफिनेशन नहीं सुन सका, 1,000, 2,000, 1,00,000, 10,00,000, 15,00,000, कल भी जिक्र, ये भी नहीं है इसकी। अल्लाह ने लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है जिक्र के लिए कसीर, कि जिसकी कोई इंतहा नजर नहीं आती। वजह उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की कि जो बिल्डिंग तू बनाएगा उस बिल्डिंग के दराजात और हिस्से कसीर होंगे, तेरा जिक्र कसीर है तो उसी मुताबिक मैं तेरे दर्जों को बुलंद करूंगा। तो अल्लाह के यहां दर्जों की हद ही कोई नहीं, अल्लाह को कोई दर्जा है नहीं, कोई हद नहीं अल्लाह के पास, लामहदूद है। तो उसने कहा कि जिक्र के बाद इंसान को जो मिलेगा बुनियाद पर जितनी मजबूत होगी तो उतनी ही मजबूत अल्लाह ताला यानी ला तादाद गिने बगैर अपने हिसाब से अल्लाह ताला उसको दर्जात बुलंद करेगा। ये जिक्र अल्लाह है, नखरे करने चाहिए। इसमें मुझे बताया, मैं कहता हूं कि इतना शुक्र आदमी करे कि सुभान अल्लाह, हमने खोदना तो शुरू कर दिया अपनी जमीन को, खोद रहे नहीं खोद रहे, बस हमारा काम हो रहा है। क्यों? एक भी ये भी सुन लो खुशी कि जो मेहनत करेगा, जो जिक्र शुरू कर देगा और जिक्र करता रहेगा, अल्लाह ताला कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता उसको फायदा ना होगा, उसके दर्जे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं अंदाजा लगा लूं कि जो पहले थे हम जब जिक्र में आए थे और आज जिक्र में बैठे हैं, कितना फर्क नजर आता है अपने अंदर इंसान। वो फर्क वही जो मैंने बताया आपको, किस चीज में पढ़ नहीं लग गए, उड़ने नहीं लगे, कोई कश्मे फर्क क्या नजर आएगा आपको? फर्क सिर्फ ये नजर आएगा कि मैं कितनी एहतियात कितनी पैदा हो गई मुझके अंदर। नमाज छूट जाती तो कितनी एहतियात होती है, जमात का कितना फिक्र पड़ता है, हराम की तरफ हाथ उठने में देर लगती है, किसी को गाली देने में जबान सोचना पड़ता है, गुस्से को कितना डाउन करना पड़ता है। यानी पहली कैफियात में सोचने लगे कि यार हमारा ये काम हराम था, इसको कुछ कम करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। ये फिक्र ही बता रहा है कि आपकी बुनियाद खुद रही है अल्लाह के जिक्र से। कितना फर्क हो, जो ये कर ही नहीं रहे तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कुछ हासिल कर सकते हैं। कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लें, एक झटके में चला जाएगा। ये है अल्लाह का जिक्र, कोई हद नहीं इसकी, ना जिक्र करने की हद है। इसलिए कह दिया कि जब तक हम ये ना देखें कि हम मुकम्मल तौर पर शरीयत पर चलने वाले हो गए, वो खौफ डर जिसकी डिमांड है, जिसकी हमें मिसालें दी गई हैं सहाबा कराम की, वो हमें उतरना शुरू हो गया, तब समझे माने इस खुशी की बनाए। हम 10 बजे सुबह बैठे हैं, हम शाम भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है इसको, हमें रिजल्ट की तरफ देख रहे हैं। ये इसका रिजल्ट नहीं है कि मैं ऊंचा जहाँ बुजुर्ग बन गया, या वहाँ खलीफा बन गया, खिलाफतें मिल गई, या मैं ये बन गया, ये तो कुछ नहीं, इसका ताल्लुक ही नहीं। ये सब जो है मेटेरियल है, मादियत है, सारा नफ्स है, ये सारा इन सब नफ्स है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल ताल्लुक ये है, वो खिलाफत मिलने के बाद या कोई दर्जे मिलने के बाद सी हो गया गुनाह कर लें आप, अल्लाह के कानून को छोड़ दें, नहीं 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 सुभान, किसी अल्लाह वाले से पूछे, कहते ये वजह नहीं है, बल्कि उसको तो ज्यादा मोहतात हो जाता है, क्योंकि एक मिसाल बन रहा है, वो तो लोगों के सामने बैठा है। हजम में बड़ी सख्ती से फरमाते थे, हम बड़ी सख्ती से फरमाते थे कि एक लम्हा भी अपनी तरफ से तवज्जो ना हटाना, मुझे कहते थे इस धोखे में ना आ जाना कि तुम कामयाब हो गए, बाकी सब शागिर्द हो, तुम पीर बन गए, कभी सोचना ना, उनसे ज्यादा फिक्र अपनी जात की करना, उनका क्या फिक्र तुम। लेकिन वो नशा जब चढ़ जाता है खत्म, मैं सबसे सही हूँ जी, बस ये पता नहीं क्या कर रहा होगा, मेरा फला मुरीद क्या कर रहा होगा, किसी को कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिए, आगे चलूँ इसमें कुछ और 3-4 पॉइंट मेरे जहन में आ रहे हैं, बताओ आपको समझ आ रही बातें मेरी, फकीरी की बातें ऐसी होती हैं, इसको लिखा करें, बहुत अच्छा नुकता आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह जहन। क्यों जी, समझ आए सबको ये बातें, आसान थी ना, समझ गए बात, क्या समझे? समझिए ये कि अल्लाह के जिक्र से हमने उस मुकाम पर जाना है, और सबसे बड़ी नेमत है कि हम कोई गैर शरीक काम ना करें, अल्लाह ने जिस चीज़ के हम हुक्म दिए हैं उस हुक्म पर काम रहे। अगर शर्म आ रही है, या अभी झिझकें आ रही हैं, ये फलां क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, तो इमाम हुसैन को देख लें, फिर ये बता कि ये इमाम था, جنگ بدر میں دیکھ لیں, صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں, وہ مثالیں تھیں. فرق نہیں ہے ہمارے ہونے میں. اب یہ کیا کہیں بچ سکتے جی وہ صحابہ کرام تھے, یہ بات نہیں, وہ تو مثال تھے. وہ مثال کا مطلب تھا تم نے بھی ایسے ہی بننا ہے, انہیں یہ نقشے قدم پہ چلنا ہے. یہ نہیں ان کی قصے سناتے رہو, واہ جی واہ کبھی ابو ہریرہ کی سنا رہے ہیں, بلال کی قصے سنا رہے ہیں, ناطے سنا رہے ہیں. اس لیے یہ نہیں, ان سے ایمان نہیں بنتے, ان سے نہ بنے نہ بنے گے کبھی. جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے, اگر بننی ہے بنانی ہے بلڈنگ, مضبوط کرنی ہے بلڈنگ, تو ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ.
سبحان اللہ,
سب والی پید. جو اس کے علاوہ ہے, میں بانگ دہوڑ یہ بات کر رہا ہوں, جو اللہ کے ذکر نہیں کرتے وہ مائنس بٹا مائنس اللہ کی کتاب کے اندر. میں بانگ دہوڑ یہ بات کر رہا ہوں قرآن حدیث کی زبان سے, پلٹیں اللہ کے ذکر کی طرف. کامیاب ہو ہی نہیں سکتا نہ وہ مرد نہ عورت جس نے اللہ کے ذکر کو نہیں پکڑا. بنیادیں اس کی یہ نہیں کہ امال ہوں گے, امال جو چاہے کر لیں, وہی بلڈنگ ہوگی بنی ہوئی جس کی بنیاد نہیں ہے. ایک جھٹکا لگتا ہے وہ بکھر جاتا ہے. اسی آدمی کو آپ کیا کرتے دیکھیں گے جو ابھی حج کر کے آئے, ابھی آپ کرتے دیکھیں گے تند گم کا, وہ گناہ کر رہے ہیں. آپ زمزم پی رہے اور پلا رہے اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں. میں دکھا دیتا ہوں مثالیں, دن رات یہ ہو رہا ہے, دن رات یہ ہو رہا ہے. حجن اور حاجی صاحب جو کام کر رہے ہیں بالکل یہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا چیز بتا رہی ہے کہ بلڈنگ کتنی کمزور ہے, بنیادی نہیں ہے. اور جن کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں سبحان اللہ, ایک حج ہی کافی پوری زندگی کے لیے, ایک ہی حج کافی. اور جیسے میں نے بتایا آپ کو, قرآن بتاتا ہے ان لوگوں مومن کے بارے میں بتایا ہے, جب مومن جو لوگ ہیں جب ان پہ ہماری آیت اترتی ہیں تو ان کے ایمان بلند ہو جاتے ہیں, ترقی پہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح پکے بنیاد والا انسان جب حج پہ جاتا ہے تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے اس کے ایمان کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے بنیاد کی طرف, لمحہ بلحمہ اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. میں ایک عجیب بات آ رہی ہے ذہن میں, آپ ذکر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذکر کرنے والے لوگ ہیں ماشاء اللہ, خوش قسمت ہے یا نہیں ہے دیکھیں کتنا فرق پڑا. ابھی ایک اور آپ کو چیز بتاؤں گا تو آپ مست ہو جائیں گے اپنی خوش قسمت. یہ چیز آ رہی ہے ذہن میں بتاؤں, دیکھیں اس کا ادام کیا ہے ذکر کا. اچھا ایک بات ذہن میں آئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام دیا, ہمارے کام, ہمارے مقصد کے کام دیا, ایک کام دیا ہے کہ تم نے میرے پاس آنا ہے, اعمال لے کر آنا ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو تو تم ایک کام کرو, اپنی بنیاد کو مضبوط کرو. ایکسٹرا کام دیا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ نہیں کر رہے ہیں, اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو یہ ایکسٹرا کام دیا ہے نا اللہ پاک نے کہ وہ اپنی محنت کرو. وہ تو صبح آپ ذکر کریں گے, فرض تھوڑی ہے, نکل گیا آپ ذکر کریں گے, کوئی ذکر نہ کر رہے ہیں بیٹھے تھوڑے نہیں تو نکل گیا. اہمیت ہے کسی کے دل میں نہیں؟ اب آپ کو نظر آ رہی ہے اہمیت ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں, کتنا فضل کرنے والا ہے. صبح آپ ذرا سنیں آپ کہ فائدہ ہمارا ہے اللہ کا ہے. اونچا بولو. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے فائدہ بھی تمہارا ہی ہے, لیکن میں چلو تمہیں اس پہ انعام بھی دیتا ہوں. خالی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اس سے تمہارے عمل قبول ہوں گے, جو ہے بات ذکر سے, تو پھر بھی ہم کرتے یا نہیں کرتے؟ وہ دیکھتا ثواب کو, اور ثواب تک دھیان جا رہا ہے ہمارا, ہمیں تو اپنی فکر پڑ گیا کہ یار ہمارا جو عمال ہے وہی قبول ہو جائیں. اب ثواب تو ذہن سے نکل گیا, سمجھ آئی بات؟ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں, تم نے میرے لیے محنت کی ہے, محنت اپنے لیے کر رہے ہو, تو بچانا تم ہی چاہتا ہوں, تو میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا. جب ذکر کرو گے تو اس کا ریوارڈ بھی ایسا دوں گا جس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے.
سبحان اللہ,
کیا ریوارڈ ہے مجھے بتائیں؟ کسی چیز کا ریوارڈ نہیں ملتا جب یہ ساری عبادات اس ذکر کے تحت آ جاتی. یہ سنتے ہیں نا آج تک تو ہم ذکر میں جناب یہ ہو جاتا ہے, یہ اتنے فرشتے آتے ہیں جنت کھل جائیں گے, یہ سنتے ہیں نا. لو آج میں آپ کو ایک نیا ایوارڈ بتاتا ہوں, اس کا عجیب و غریب ایوارڈ ہوگا سائنٹیفک. انسان ہم ہیں نا, یہ ابھی سائنس بتاتی ہے. میں تھوڑا اشارہ دوں گا, آج مکمل بات نہیں کروں گا, پھر انشاءاللہ اس پہ اور بات کریں گے, ہلکا اشارہ دوں گا. دیکھیں ہم انسان ہیں نا, سائنس کہتی ہے کہ جو بندہ ہے نا, جیسے یہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, ہم تو سمجھ کانسٹنٹلی ہم یہی ہیں, یہ نہیں ہے صاحب. हमारे अंदर खलिए हैं, खलिए कहते हैं या खलिए कहते हैं, जिसकी इंग्लिश में सेल कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे बोलो, सेल सुना है ना लफ्ज, हम सुनते हैं सेमी सेल, इंसान के अंदर ब्लड सेल, सेल कितने हैं, साइंस ने काउंट किया है इसको, एक वक्त में हर इंसान के अंदर 6 खरब, अब मैं इसको इंग्लिश में नहीं जानता कितना होगा, यानी मिलियन 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 सिर्फ आप तकसीम करते चले जाओ, 6 खरब काउंटलेस आपके अंदर अंदर मेरे वो खली हैं, छोटे छोटे खली होते हैं, बस में 6 खरब, और उसका क्या काम रखा है अल्लाह ताला ने, देखें किस तरीके सिस्टम रखे इंसान के जिस्म में, क्योंकि जो खलिये जो हैं, सेल्स जो हैं, वो बनते रहते हैं बॉडी में, हर वक्त बनते हैं अभी टाइम, और पुराने गिर रहे हैं, आप वहां से वहां तक आए ना, घर से मस्जिद तक गिराते हैं आप सेल, सेल गिराते हैं, होता क्या है कि विद इन 6 मंथ आप एक नया इंसान बन जाते हैं, सिस्टम आपको क्या कहते हैं उसको, रिचार्ज कहते हैं क्या, रिन्यू हो जाता है सारा कुछ क्षमता, 6 महीने के बाद आपकी हर चीज बदल जाती है अंदर से, गुर्दे पित्ते शित्ते जो सिस्टम है ना सारा, कितना सिस्टम वो बिल्कुल न्यू हो जाता है इंसान, सेल्स गिरते रहते हैं नए बनते रहते हैं, गिरते रहते हैं नए बनते रहते हैं, और हर वक्त मौजूद कितने रहते हैं 6 खरब, ये बात समझ आ गई इसी तरह, हर आदमी सब बैठा है कितने खली ले बैठा होगा 6 खरब, हर औरत इस वक्त आप जिक्र में बैठे, अब जरा अल्लाह का इनाम देखिएगा, जब इंसान जिक्र कल्बी सीखता है, जिक्र कल्बी खफी जिक्र जिसने सीखा है माशाल्लाह, तकरीबन मैं समझता हूँ 90% लोग हैं, 90 जिन्हें मुझसे जिक्र सीखा है, आप कितने खुशकिस्मत हैं और कितनी बदकिस्मती इंसान जो अल्लाह का जिक्र नहीं सीखता, इससे अंदाज़ा लगा लेना, जिक्र कल्बी खुद नहीं कर सकता आदमी, इसको सीखना पड़ता है, अल्लाह ताला देखे इस पर भी नुकता रखे, कल्बी जिक्र दिल से अल्लाह को याद करना जिस पर कल्ब जारी होता है, समझा गई बात, ये क्या चीज है, जिस वक्त इंसान जिक्र कल्बी सीखता है और शेख जिक्र देता है तो क्या होता है, उसके पूरा वजूद जाकिर हो जाता है, ये सुन ले, हर वो इंसान जिसने आके अपने शेख से पहली दफा जिक्र सीख लिया वो मुसलसल जाकिर हो गया, ऊपर से नहीं, उसका वजूद का हर चीज ये अल्लाह का, ये अल्लाह ने अपने जिक्र पर रखा है, कल्बी जिक्र पर नक्शबंदी सिलसिले बता रहा, उसका जो पूरा जिस्म है वो जाकिर हो जाता है, और जाकिर का ये हम गलत समझते हैं इसको, जाकिर का कोई मुशाहिदा नहीं है, इसका सिर्फ एक चीज है कि किसी शेख से जिक्र सीख लिया उसने वो जाकिर है, बोलो सुभान अल्लाह, अरे टॉप की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, ये नक्शबंदी सिलसिले ये क्या हो गया, वो इंसान जाकिर हो, उसका कोई सबूत ही नहीं, ना किसी मुशाहदे का, ना किसी चीज का, ना कल्ब के हिलने का, ये कोई दस्तूर नहीं है कि कल्ब हिल रहा है, कल्ब नहीं चल रहा, जारी और नहीं, बस अल्लाह ने कहा एक कि सच्चे दिल से एक इंसान ने कहा जी मुझे जिक्र सिखाओ, और शेख ने उस पर कर्म कर दिया और उसको जिक्र सिखा दिया, वो मुकम्मल जाकिर हो गया, और जाकिर होने के बाद उसकी कैफियत क्या होती है कि उसका जिस्म का हर खून हुआ पूरा जाकिर हो जाता है, पूरा जाकिर हो जाता है, सो रहा हो चल रहा हो फिर रहा हो जा रहा हो, लेकिन वो क्या है कि जिक्र के अंदर महव होता है वो शख्स, क्योंकि कल्ब जो उसने अल्लाह को दे दिया पहली, इसको कहते हैं पहली नजर में जाकिर हो जाता है कल्ब जिक्र वाला, बोलो सुभान अल्लाह, कितना बड़ा तोहफा है, याद करेंगे क़यामत में ये बातें क्या चीज थी, आगे चले, फिर इस पर अल्लाह ने एक इनाम रखा है, कहते हैं ऐसा नहीं, जब बंदा जाकिर हो गया, अब जरूरी हो जिक्र कर रहा ही नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज उसका जो जिस्म है वो जाकिर है, अल्लाह को पहचान गया, ये अंदर से ताल्लुक है ना, वो पहचान गया कि रब है मेरा, वो जिक्र कर रहा है उसका, तो अल्लाह क्या कहता है कि जब वो बंदे की तरफ से, वो बंदे की तरफ से तेरा जिस्म जो जिक्र कर रहा है, मैं तेरे हर जिस्म के जिक्र पे इनाम दूंगा, कितने बाल होंगे हमारे जिस्म पे आपने लिए, हर बाल जो जाकिर है हमारा, हर बाल को अल्लाह ताला कह रहा है उसको उसके मुताबिक दर्जा दूंगा कयामत के अंदर, दर्जा दूंगा, दाढ़ी के बाल है, हाथ के बाल है, कान के बाल है, सब बाल है ना, ये सब एक एक बाल पे अल्लाह जिक्र के दर्जे इनायत फरमाएंगे रोजे कयामत में, ये जाकिर का दर्जा होगा रोजे कयामत में जन्नत में, जन्नत में दिया जाएगा। आगे चले, किसी बात सुनेंगे हैरान। चलो ये बाल है हमारे, गिन सकते हैं, इतने हैं, इससे तो बाल बढ़ता तो नहीं ना, घटते ही है, बड़े होते जाएंगे झड़ता जाता है ना, बढ़ता तो नहीं ना, जो एक उगा है उसके बाद जड़ेगा ना बाल, जैसे दाढ़ी का बाल कम होने शुरू होते हैं, एक हद तक बड़े होते हैं, जैसे सर के बाल उतरने शुरू हो जाते ना, बढ़ते तो नहीं ना, ये तो वहीं के वहीं है। तो ये जो जिस्म पे जो कुछ था जिसने जिक्र किया, इसका हमें नाम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में। अल्लाह ताला नहीं, ये भी तो काउंट वाली बात है, मैंने तो कहा कसीर, सुभान अल्लाह, मैं तो दूंगा कसीर, अब आए कसीर कैसे होगा, हाँ भी वो भी किस्म के कोई नंबर नहीं है। कितने बताए थे मैंने फलिया आपको, 6 खरब। हर वक्त जब जिक्र करता है बंदा तो 6 करब खुली उसके साथ जिक्र करते हैं, और सारे के सारे जब रोजे क्यामत में जाएंगे, जन्नत में पहुंचेंगे, अल्लाह एक एक खली के बदले उसको इतना बड़ा इनाम जन्नत में देगा, जिक्र का कोई तस्वर नहीं कर सकता। तो कितने हो गए इनाम जनाब जिक्र करने का, 6 खरब हर वक्त जो खली आपके जिक्र कर रहे हैं। इसे आगे चले, 6 खरब हो गए, ये तो एक वक्त का, जैसे अभी ये जिक्र कर रहे हैं तो 6 खरब अब ले लिया उन्होंने, आपने ले लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपकी उम्र कितनी है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो 80 साल के सारे 6 खरब प्लस करें 80 ईयर्स, कितने हो गए, नो कैन काउंट इट। 80 साल में एक इंसान मरता है और 6 खरब को चेंज हो रहे हैं ना, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, जितने गए हैं वो नए आ गए, तो 80 साल के वो 6 खरब जो खुलिए थे उनको आप मल्टीप्लाई करें तो कहां जाके बात रुकती है। अल्लाह ताला ये रोजे पते रोजे क़यामत में अल्लाह ताला हर जुज को इंसान के उसके सामने पेश कर देगा। जैसे एक इंसान मरा है ना, बाल भी आ जाएंगे, सर के सब कुछ आ जाएगा, जो भी इसका जिस्म के हिस्से होंगे अल्लाह उसको जमा करेगा। जैसे बाज़ में कि एक इंसान की दाढ़ जो है ओहद पहाड़ के बराबर बन जाएगी, होगा क्या कि जितने भी खुलिए थे जो उसने गिराए थे जमीन पे गिरे थे वो सारे जमा हो जाएंगे अल्लाह के पास। जितने भी खोली हमने गिराए हैं और नए बनते रहे गिरते रहे, वो सबको अल्लाह ताला जमा कर लेगा एक जगह पर और इंसान को अता फरमा देगा, और हर खली के बदले अल्लाह पाक उसको जन्नत में मुकाम अता फरमाएगा। नहीं समझे बात, तो मुझे बताएं अल्लाह के जिक्र का क्या इनाम पूछना है इसका, जिस जिक्र का इनाम है जो अल्लाह देगा, जिस तो एक इनाम है जिससे दर्जात बुलंद होंगे, और असल बुनियाद तो वो होगा कि जब बुनियाद पक्की होगी और सारे अमाल कबूल हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह का करम है, खास है, जिक्र कल भी सीखें बहुत ज़रूरी है, दोस्तों को कहें, घर वालों को कहें, खुद भी सीखें, सीख लेंगे फिर अल्लाह का जिक्र आते हैं साकिर तो हो जाते हैं अल्लाह का फसल से। जिक्र सीख लें, बिल्कुल हमें अहमियत नहीं कि हमें जिक्र की अहमियत क्या है। आज अजीब अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह बात पता चली है कि कितनी अहम चीज़ है, बुनियाद नहीं, हम तो अपने अमालों पर खुश हैं ना, अमालों को गिनते रहते हैं, अल्लाह के बंदे मालूम कौन गिनता है, बुनियाद को देखो, और बुनियाद हर लम्हा हमें पता लगता है, हर लम्हा बदलता है कि कितनी मजबूत हमारी बुनियाद है। जितने अमाल हमारे शरीर के खिलाफ होते हैं, जबान से, आंखों से, निगाहों से, ये बताती है कि तेरी खिड़कियाँ कमज़ोर हैं, तेरी दीवारें भी कमज़ोर हैं, तेरे फर्श पे भी सही नहीं लगे, तेरी छतें भी टपक रही हैं, एहसास करते रहे अभी बिल्डिंग बहुत कमज़ोर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब सब चीज़ों से रुकना आ जाए, खौफ आ जाए, तो समझो जी माशाल्लाह प्लास्टर भी फर्स्ट क्लास हो गया है, कारपेट भी बेहतरीन पड़ा है, छतें भी बड़ी मजबूत हो गई हैं, अब कोई भी आ जाए तूफान इंशाल्लाह गिरेगी नहीं बल्कि बिल्डिंग बढ़ेगी ऊपर की तरफ। अल्लाह पाक मुझे आपको जिक्र की तौफीक नसीब फरमाए।